ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தஸ்மை பூர்வ கா பராமர்ஷ் கர்த்தா ஹை ஐசே சிஷ்ய கே லியே. சவித்வான் தஸ்மை உபசன்னாய सविद्वान सम्यक, तो उसे शिष्य के लिए जो उपसन्न हुआ है, उपसन्न हुआ है, उपसन्न माने पास में जो आया हुआ है, बिल्कुल समीप में आ गया है, जहां गुरु विराजमान है वहीं वह बैठना चाहता है. तो इस प्रकार शिष्य के लिए फिर प्रशांत चित्त आए, प्रशांत चित्त होए. देखो, क्योंकि यदि शांत चित्त ना होगा तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की योग्यता नहीं है, उस ब्रह्म ज्ञान उसमें उतर नहीं सकता है. प्रशांत चित्त का अर्थ होता है, ये इसका अर्थ ये हुआ कि मन में सम होना चाहिए. सम माने मन में शांति होनी चाहिए. सम माने शांति. एक ही के छह नाम हो गए. देखो, आप सत्क संपत्ति में सम पहले है, दम उपरति तिरिच्छा चार हो गए, श्रद्धा समाधान छह हो गए. तो ये छह नहीं है, एक ही है. जब मन में व्यक्ति के काम क्रोध लोभ का विक्षेप नहीं रहता है, जब मन में इनका लौल्य और चांचल्य नहीं रहता है, तब उसी शांति को सम कहते हैं. चित्त में माने मन में सम होना चाहिए. और यदि कोई विकार है जीवन में, मन में, जीवन माने मन में, तो वो इधर उधर खिंचा खिंचा रहेगा उन वस्तुओं के द्वारा. तो शांत होकर के जो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ उपदेश देगा वो उसमें टिक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा. पहली शर्त यह है कि मन खाली हो. यदि वस्तु पात्र खाली न होए, भरे हुए पात्र में कोई दूसरी वस्तु नहीं आ सकती है. अब तो आपको निर्वेद हुआ है ना, तो निर्वेद हुआ तो रिक्त पात्र होना चाहिए. और यदि निर्वेद नहीं होगा, मन सम नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगी, विक्षेप होगा, तो उपदेश ठहरता नहीं है, बिल्कुल नहीं ठहरता है. यदि भी छेप हो तो आप सुन भी नहीं सकते हैं. देखो, मोटी सी बात नहीं सुन सकते हैं, ये तो बहुत बारीक है, बहुत गूढ़ है, वो कैसे हम समझ सकेंगे. तो सम का अर्थ हुआ कि काम क्रोध लोभ न हो. काम होगा तो आकर्षण होगी वस्तु का, क्रोध होगा तो हिंसा और द्वेषास्पद व्यक्ति के प्रति जलन होगी, यदि लोभ होगा तो धन होगा. लोभ धन को लाएगा, काम सौंदर्य को लाएगा, और क्रोध शत्रु को ले आएगा. और ब्रह्म विचार करने हम बैठ गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. इसलिए देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बात कही है, कही कि तिब्धम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रयम त्यजेत. फिर कहते हैं कि इनसे मुक्त हो गए जो. एतैर मुक्तः कौन्तेय तमो द्वारा आत्मना. एतैर मुक्तः कौन्तेय, एतैर विमुक्त है, एतैर माने काम क्रोध लोभ से विमुक्त है। तो फिर वो शेय का आचरण करे तो उसे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ये साथ में होंगे तो फिर प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा आप देखिए एक और श्लोक आपको सुना देता हूं, बिल्कुल सटीक इसी से युक्त है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज मन बहुत चंचल है, कोई सरल सा उपाय बता दीजिए जिससे मन की चंचलता भी बनी रहे और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए। अर्जुन हस्तिनापुर की संपत्ति का प्राप्त करने की इच्छा वाला नहीं है, उसे तो श्रेय चाहिए, परमात्मा चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और मन बहुत चंचल है, इसके रोकने में महाराज बड़ी कठिनाई है, ये रुकता ही नहीं है। जैसे वायु है, वायु का वेग बांधना, वायु को रोकना बड़ा कठिन है, अशक्य है, अशक्य अनुष्ठान है वायु का रोकना। इसी प्रकार से वायु की तरह ये चंचल मन को कैसे टिकाए ठहराएं जिससे हम अपने श्रेय को प्राप्त कर लें। तो वो बात तो आपको मालूम है, पर एक बात पर दृष्टि हमारी नहीं जाती है उसको आप देखिए। असन्यतात्मना योगो दुष्प्राप्तीत मे मति, वश्यात्मना तो यदता शक्यो वाप्तुम उपायता। असन्नतात्मना योगो दुष्प्राप्तीति मे मति। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण जोर दे करके कह रहे हैं कि ये मेरा मत है। अब भगवान के मत का खंडन करने का कौन साहस करेगा। असन्नतात्मना योगो दुष्प्राप्त, अप्राप्त नहीं दुष्प्राप्त, ये मेरा मत है। मैंने जो असन्नतात्मा है जिसका मन टिका नहीं है, ठहरा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग की प्राप्ति असंभव है। वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायता, जो प्रयत्न करता है, देखो वश्यात्मना यतता माने यत्न से प्राप्त हो गया है, मन हो गया है बस में जिसका। उपायता शक्यो वाप्तुम उपायता, उपाय से ये शक्य है, संभव है, अशक्यानुष्ठान नहीं है। हम आपको अशक्यानुष्ठान नहीं बता रहे हैं कि जो आप कर ही नहीं सकते हो। अभ्यास न तो कौन थे या वैराग्य न चक्रियते, अभ्यास हो और वैराग्य हो तो ये जरूर मन शांत हो जाता है। तो पहली अध्यात्म की सीढ़ी है मन की शांति, और मन की शांति बड़ी चीज है। दूसरी बात कहते हैं कि समन्विताया, यहां समन्वित का अर्थ करते हैं नारायण है, समन्विताया बाह्य इंद्रिय उपरम मेणा, बाह्य इंद्रियों के उपरम को ये कहते हैं समन्वित हो गए, माने जिसे आप दम कहते हो, दम भी हो, ऐसे दम से युक्त शिष्य के लिए, ऐसे शांत शिष्य के लिए, दम से युक्त शिष्य के लिए। दम का मतलब है कि अपनी बाहर की जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में बहुत चांचल्य न हो। दम का अर्थ ये होता है कि अनावश्यक हम न देखें, अनावश्यक न सुने, अनावश्यक न बोलें, अनावश्यक न छुएं, अनावश्यक न सुनें। और यहां तक तुम्हारा जी महाराज श्री ने अपने प्रवचन में एक बात कही कि जो विरक्त हो, सचमुच जिज्ञासु हो, जो गृहस्थ न हो, उसके लिए तो आवश्यक भी न छुए कहते हैं। मने लोग वेद विरुद्ध काम को भी ना करे हो, अविरुद्ध काम को ना करे, मने लोग जिसकी अनुमति दे रहा हो, वेद भी दे रहा हो, उसको भी ना करे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ना यहां। तो यदि कोई कार्य धर्म हो, जैसे अन्य क्षेत्र खोलना है, उसके लिए बहुतों लोगों से जुड़ना पड़ेगा। पूज्य श्री डोंगे जी महाराज कहा करते थे कि आश्रम और तमाम चीज बनाने से, सामाजिक कार्य करने से गलत लोगों से जुड़ना पड़ता है, बोलते थे उनके शब्द बोल, गलत लोगों से जुड़ना पड़ता है, इसलिए भक्त को या परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को ये इनको भी छोड़ देने चाहिए। अर्थात जो विचार में बाधा हो ऐसे धर्मकार को भी छोड़े हो। गृहस्थ के लिए तो विहित है, गृहस्थ के लिए काम क्रोध लोभ का अतिरेक ना हो। काम क्रोध लोभ तो हो वे, पर काम क्रोध लोभ का अतिरेक ना हो। गृहस्थ में रह रहा है, धर्म है उसका, तो यदि वो कामना नहीं रखेगा तो संग्रह नहीं होगा, तो संग्रह नहीं होगा तो धर्म के काम नहीं होंगे। यदि लोभ, हाँ, यदि क्रोध नहीं होगा, थोड़ी बहुत क्रोध बच्चे को रास्ते में चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा क्रोध भी होए, काम भी होए, थोड़ा सा संग्रह का लोभ भी होए। लेकिन यदि काम क्रोध लोभ ही व्यक्ति के विनाश का हेतु है तो फिर ये तो स्वभाव से ही प्राप्त है। गुरुजी भी कभी कभी डांटते हैं, गाली देते हैं, आपको क्या मालूम है? आपको अपने घर की बात मालूम है। गुरुजी भी कभी कभी नाराज होते हैं तो क्या नरक में जाएंगे क्या? तो आप आइए देखिए, गृहस्थ के लिए थोड़ी सी छूट मिली हुई, लेकिन विरक्त हो तो सिर्फ यदि विचार में जो धर्म में ही बाधा हो तो उसको भी छोड़ दे। अच्छा, अब उपरति का अर्थ होता है कि भाई थोड़ा सा, जैसे कि अभी निवेदन किया कि बहुत कर्म में ना लगे वो, और तितिक्षा का मतलब हो सर्दी गर्मी सहन करना चाहिए, वो सुख भी सहन करना चाहिए, दुख भी सहन करना चाहिए। हाँ, ऐसा यदि आप अपने जीवन में ये निश्चित कर ले तो आपका घर गृहस्थी भी स्वर्ग बन सकता है। थोड़ी सी सुनने की भी आदत होनी चाहिए। सुख दुख होता है ना सुनने से, देखने से भी दुख होता है। थोड़ा सा आंख बंद करे और थोड़ा सा कभी खोल लेवे, और कभी कान बंद करे या कभी खोल लेवे, तो सुख दुख की जो साल, सुख दुख के जो हेतु हैं उनको सह ले। शीत है, उष्ण है, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है जी, भूखा हो तो उसको भी सहन करें। तो अब ये उपरति और तितिक्षा, हाँ, उपरति कर्म से उपरति होनी चाहिए और तितिक्षा ये हो गई सहन, और श्रद्धा माने जो गुरु जी कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहा है, इसी में हमारा हित है। देखो, श्रद्धा और विश्वास में अंतर है। कभी कभी विश्वास श्रद्धा एक साथ फल को देते हैं और एक साथ दोनों को लाना पड़ता है, और कभी कभी श्रद्धा ही होती है, विश्वास नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आप, मैं समझता हूं कि ऐसे भी हो सकते हो कि आप घर में दो ही हों, बहुएं बाहर सर्विस कर रही हूं, बेटा विदेश में ही हो गए, तो आप घर में से जब घर से आते हो तो वहां नौकर को छोड़ के आते हो, तो नौकर पर श्रद्धा रखते हो कि विश्वास रखते हो? नहीं बोलते मम्मी के लोग, विश्वास रखते, श्रद्धा से छोड़ के नहीं आते हो। तो अंतर हुआ कि नहीं? सेवक पर, नौकर पर आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास है कि ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यहां आते हो तो विश्वास से आते हो कि श्रद्धा से आते हो? श्रद्धा से आते हो, तभी तो श्रद्धा मालूम पड़ रही आपकी। देखो, हमारे से भी बड़ी जानकार लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, फिर भी प्रणाम करते हैं। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा में अभिमान नहीं रहता है, श्रद्धा में विनम्रता, सेवा, जिज्ञासा, ये तीन चीजें होती हैं। तीनों लेकर के आते हो, तीनों न हो तो नहीं आ सकते हो। एक और आपको बताऊं कि गीता में जो 17वां अध्याय है ये पूरा श्रद्धा का ही अध्याय है। आपके जीवन में सब कुछ होवे, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, घर हो, कोठी हो, नौकर हो, संपत्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, सब कुछ होवे, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी इन साधनों से आप कुछ करेंगे श्रद्धा से रहित होगा वह सब असत होगा। अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत नुह्या। अश्रद्धा से दिया हुआ दान, श्रद्धा रहित किया हुआ यज्ञ, अश्रद्धया हुतं दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् यत् कृतम सर्वनाम है, जो भी करते हो असदित उच्चते हे पार्थ, ये सब असत होते हैं। और श्रद्धा है आपके पास और कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है। आप देखिए श्रद्धा में कितना बल होता है। श्रवण कुमार को सुना होगा, श्रवण कुमार को, वो अपने माता पिता को कांवड़ में कंधे में बैठा करके और पूरे भारत का भ्रमण करा रहे थे, तीर्थों में यात्रा करा रहे थे। तो विश्वास से कि श्रद्धा से, श्रद्धा से, श्रद्धा इतना बड़ा तप करा लेती है, श्रद्धा इतनी विनम्र होती है कि अगले वाले व्यक्ति के अंदर की बात उगलवा लेती है। श्रद्धा न हो तो विनम्रता न होगी, झुकेगा नहीं, सेवा नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। तो आप श्रद्धा हो गए, गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास हो गए कि इसी में मेरा कल्याण है, ये श्रद्धा अभिमान निवर्तक है। अभिमान नहीं रहे विश्वास में तो संभव है अभिमान की। क्यों आप जाएंगे नौकर पर विश्वास तो किया है, यदि कोई गड़बड़ किया तो आप कहेंगे कि देखो तुम यहां से जा सकते हो, हम दूसरा कर लेंगे। पर गुरु के संबंध में ये बात नहीं लगती है। श्रद्धा है, बस श्रद्धा है। एक बार एक मैडम पढ़ा रही थी बच्चों को, बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम किसी जंगल में जा रहे हो, घोर जंगल है, चलो रणथंभौर का समझ लीजिए, रणथंभौर के जंगल में सिंह हैं और कहीं रास्ते में सिंह मिल गया सामने, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, एक लड़के ने कहा कि मैडम अब हमको क्या करना है, अब तो उसी को करना है जो कुछ करना है। तो पहले विचार लो, है ना, फिर ना सोचना कि ये तो गड़बड़ हो गया। पहले विचार लो, पहले जान लो, पहले छान लो, और फिर जो गुरु कुछ कहे उसे मान लो। तो इसमें समदम उपरतिच्छा श्रद्धा समाधान एना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जो सत्य अक्षर है ना, भगवान शंकराचार्य जी पुरुष का अर्थ करते हैं पूर्णत्वात्, पुरुष एनाचा, पुरुष का अर्थ क्या हुआ, जो पुरियों में शयन करता है, और पूर्ण होने से भी पुरुष कहते हैं। और अक्षर का अर्थ करते हैं कि जिसका क्षर न हो, अक्षरणात् अक्षतत्वात् अक्षयत्वात्, जो क्षय न हो, क्षरण न हो, जो क्षय को प्राप्त न होता हो, उसको अक्षर कहते हैं। तो वो जो अक्षर और परम पुरुष है, तो सत्यम जो सत्य भी है, प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उसे तत्वतः परम विद्या का उपदेश उस शिष्य के लिए करना चाहिए। जिसका ये प्रसंग चल रहा है आप देख लीजिए कि पहले पराविद्या की एक सूची बताई गई थी कि वो दृश्य नहीं है, वो उसका गोत्र नहीं है, और वो जितने भी उसके लक्षण बताए गए थे वो एक सूची सी बना दी गई थी, उसी के संबंध में यहां संकेत कर रहे हैं कि इस प्रकार के तत्व को ऐसे शिष्य के लिए गुरु को उपदेश देना चाहिए। एक और बात देखिए कि ये दीवाल होती है, दीवाल है, दीवाल को कारीगर जब रंग चढ़ाता है तो उसकी देखता है सीलन कहां है, तो सीलन को पहले झाड़ता है और उसकी धूल को झाड़ता है, उसके जाले को हटाता है, खरोंच खरोंच करके दीवाल को खराब कर देता है। अब यदि खरोंचे न दीवाल को तो दीवाल में रंग सही नहीं चढ़ेगा, दीवाल रंग सही नहीं पकड़ेगी। इसी प्रकार से यहां पहले साधन का प्रचुर मात्रा में वर्णन करके साध्य के संबंध में थोड़ा सा कहा इन्होंने, तो आपसे ये कह रहा था कि साधन ही तो मुख्य है, बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती, बिना उपाय के उपेय की प्राप्ति नहीं होती, उपाय ज्यादा होता है उपेय थोड़ा होता है। पर यहां ये न समझ लेना कि उपेय थोड़े का मतलब मैं कह रहा हूं परछिन्नता की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उस परमात्मा की प्राप्ति तो बड़े भाग्य से होती है और इसी परमात्मा की प्राप्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में और परमात्मा में अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा और ज्ञान ये दोनों सब एक ही चीज है। ज्ञान है तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि नहीं कछु दुर्लभ नारायण, रामायण में कहा है कहीं संत मुनि वेद पुराणा नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान के समान इस दुनिया में और कोई दुर्लभ नहीं है। जी पुरुषार्थ से सब प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग भी ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो सकता है, पर बिना गुरु के बिना भगवान की कृपा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ नहीं ज्ञान न सदसम पवित्र नहीं विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है कि सारे व्यवहार का आशय है, सारे ज्ञान का आशय है, सारे आनंद का आशय ज्ञान ही है। ज्ञान की एक महिमा में एक कवि ने लिखा है कि देखो ये कुआं है, कुआं हम यात्रा करते हैं तो पता चलता है कि सागर है, यदि पता न हो ज्ञान न हो तो चैतन्य महाप्रभु की तरह इसी में घुस जाएंगे और इसी में गर्क हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम यात्रा करते हैं तो ज्ञान होता है कि ये कांटा है, यदि कील पड़ा हुआ इसमें पैर रखेंगे तो गड़ जाएगा, चुभ जाएगा तो तकलीफ होगी, पर ज्ञान है उसका निवारण करता है उस तकलीफ का। ज्ञान के कारण हम कील में पैर नहीं रखते, ज्ञान के कारण हम कुएं में नहीं गिरते हैं, ज्ञान के कारण हम सागर में नहीं घुसते हैं। ये देखो ज्ञान व्यवहार में किस प्रकार से आपको अनिष्ट से बताता है। सर्पान कुशागान्तथोदगानी ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति, ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ति, कान परिवर्जयन्ति तो बोले सर्पान कुशाग्रान तथोदकान, उदक को सर्प से कील से कांटे से ज्ञान बचाता है। अज्ञानतः तत्र पतन्ति चान्ये, और जो ज्ञान नहीं है जिनके जीवन में वो उसी में पतित हो जाते हैं। ई ज्ञान का फल देखिए, तो ये जो जिस परा विद्या से उस अक्षर पुरुष की सत्य की प्राप्ति होती है, तो ऐसे शिष्य को जो विनम्रता से आया हुआ है, समदर्मादी जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है इसके साथ लगी हुई है, उससे युक्त जो आया हुआ है उसको जरूर ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। उसकी श्रद्धा में, उसके तप में, उसके विचार में ठेस ना पहुंचेगी। इसलिए गुरु का भी ये कर्तव्य है कि प्रोवाचताम तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्त्वतः तत्व से ब्रह्म विद्या का उपदेश देवे, अतत्वता नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्म विद्या तो वस्तुतः तत्वता ही होती है। एक और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कश्चित माम वेति तत्वतः, इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा को घटत्वेन पटत्वेन वस्तत्वेन सर्वे जानन्ति, घट रूप से पट रूप से सब जानते हैं, तत्व से नहीं जानते हैं। तो तत्व क्या होगा, वो तत्व आपको आगे वाले खंड में सुनने को मिलेगा। समय हो गया इसलिए आज का विश्राम ही, अगली सेवा आपकी कल निवेदन करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः।